Maria. Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachariya. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Yamuna Tira Vanachari Yamu. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Advaita Gadadha Sivasadiyo Bhakta Vrinda. Jaya Sri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Jayo Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jayo Jayo Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra जय गौरनिता जय गौरांगनिता गौरांगनिता जय गौरांगनिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा गुणितयोर हरि बोल हस्तो हरि बो हरि बो नितय गौर हरि बो जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्रज काचार्य अष्टोत्तर शत नित्यलीला प्रविष्ट भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य ठाकुर हरिदास की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगमाई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की इताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड ड्यूटी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड ड्यूटी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड ड्यूटी ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु श्री गौरंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद चार अध्याय अट्ठाईस श्लोक नंबर 49 और 50 इसमें 49 लिखा है इसके तात्पर्य छोटा इसलिए 50 भी पढ़ेंगे एवं विलापन्ति बाला विपिनेनुगता पतिं पतिता पादयोर्भूतो योर्भर्तु रुदत्या शून्यवर्तय एवं विलापन्ति बाला विपिनेनुगता पतिं पतिता पादयोर्भर्तु रुदत्या शून्यवर्तय एवं विलपन्ति बाला विपिनेनुगता पतिं पतिता पादयोर्भर्तु रुदत्या शून्यवर्तय
पतिता एवं विलपन्ति बाला विपिने अनुगता पतिं पतिता पादयो भर्तु दत्त्या शून्यवर्तय एवं विलपन्ति बाला
शब्दार्थ एवं इस प्रकार विलपन्ति विलाप करती बाला अबोध स्त्री अबला विपिने निर्जन वन में अनुगता साथ गई हुई पतिम पति को पतिता गिरी हुई पादयोः पैरों पर भर्तुः पति के रुदती रोती हुई अश्रुणी आंसू अवर्तयत गिरा रही थी। तात्पर्य और अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार वह परम अज्ञाकारिणी पत्नी अपने अमृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। तात्पर्य अनुवाद द्वारा ये इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। इसमें एक लाइन का तात्पर्य है, दो लाइन का। जिस प्रकार पति परायणा पत्नी, तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी का, शिल प्रभुपाद की। जिस प्रकार पति परायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। 50 नंबर का श्लोक है। चितिम दारु मयिम चित्वा तस्यां पत्यो कलेवरम आदित्य चानुमरणे विलपंती मनोदधे। इसका शब्दार्थ, चितम चिति दारु मयिम लकड़ी से बनी, चित्वा चुनकर, तस्याम उस पर पत्ति हो पति का, कलेवरम शरीर आदिप्य जलाकर, च भी अनुमरणे उसके साथ मरने के लिए, विलपंती विलाप करती मनः अपना मन दधे स्थिर कर लिया। इसका अनुवाद है, तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। तात्पर्य यह अत्यंत प्राचीन प्रथा है कि श्रद्धावान पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है, यह समरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने के लिए बाध्य कर देते थे। पहले ऐसे न था, पति स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद कर दिया, किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थी। प्रश्न यह था कि वे दोनों मरे या एक। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे, माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती पांचों पांडवों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में देखा है कि एक पति परायणा पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जाए। अभी हंसे नहीं आप? जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणित करें, अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नत होना चाहिए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदे श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा रघुनाथान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पदीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। इस श्लोक में बताया गया है कि जो थी पुरंजन उपाख्यान चल रहा है, इसमें बताया कि किस प्रकार से आज्ञाकारिणी पत्नी को अपने पति के साथ ही सती हो जाना चाहिए। तो भारत में यह प्रथा पहले थी अंग्रेजों के आने के पहले तक, कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को इतना विरह होता था कि वो बोले जिंदा रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो बोलती इससे अच्छा कि मैं पति के साथ ही सहमरण, उसको बोलते साथ में मरना, सती प्रथा, और वो पति के साथ चिता में प्रवेश करके स्वेच्छा से वो मर जाती थी, जल जाती थी। हम भारत के देखते हैं इतिहास में, राजस्थान में जो राजा होते थे, जब राजा युद्ध में मर जाते तो उनकी पत्नियां भी उनके साथ में जल जाती थी। जैसे एक राजा थे, उनकी पत्नी थी पद्मावती, और उनकी बहुत से और भी सहेलियां थी जिनके पति युद्ध में मर गए थे। तो सब लोगों ने कूद कूद के आग नीचे आग लगा के उसमें कूद कूद के सबने अपना जान दे दी। बाद में स्त्रियों की इच्छा कम हो गई मरने की, तो घर वाले क्या करते थे, उसको जबरदस्ती पकड़ के ढकेल देते अंदर, तो मर जाते। ये अब सती प्रथा है। तो जब अंग्रेजों ने देखा इसको तो उन्होंने इसको अमानुष समझा कि किसी को जबरदस्ती से जिंदा, जिसका इच्छा नहीं है पहले तो इच्छा से वो जीवन त्याग करती थी, लेकिन बाद में उसको ये करने के लिए मजबूर किया जाता था, उसका इच्छा नहीं होता था मरने का। और अभी तो समाज में हम सोच सकते हैं क्या है। एक लड़की थी, एक स्त्री थी, वो अपने पति के कब्र को ऐसे हवा डाल रही थी। तो एक व्यक्ति ने देखा कि कितना इसका भाव क्या है। आदमी स्त्री जिंदा रहती है तो अपने पति की सेवा करती है, और ये स्त्री पति मर गया है कब्र को भी ये पंखा कर रही है। तो जाके बोला, बहुत धन्य है, मैं बहुत प्रभावित है आपसे। तो वो बोली क्यों? बोले आप तो जय श्री श्री गौ निताय श्री राधा वृंदावन जल श्री राम सुद्रमाई की, आप मृत्यु के बाद भी अपने पति की सेवा कर रही है। तो बोले ऐसे नहीं है, मेरे पति जिंदा थे तो उन्होंने बोला था कि जब मैं मर जाऊंगा तो जब तक मेरी कब्र सूखे नहीं तुम दूसरा शादी मत करना। मैं उसकी कब्र सुखा रहे। तो धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो ये जो प्राचीन हमारे जो संस्कार है ये वैदिक संस्कार है, इसको लोग छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं और सोच रहे कि हम इसमें खुशी से रहेंगे। लेकिन वैदिक संस्कृति को हम पकड़ के चलेंगे तो ही हमको आनंद मिलेगा, नहीं तो वो जो क्षणिक आनंद है रहेगा फिर वो टूट जाएगा। शादी सुबह करते हैं, कभी कभी शाम को भी छोड़ देते हैं, ऐसे भी होता है, 8 दिन में छोड़ देते हैं, बहुत से होते हैं ऐसे। तो अगले श्लोक में, ये जो अगला श्लोक है कि वो उसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उन्होंने दिया है कि पांडु का उन्होंने उसमें उदाहरण दिया है कि उनकी दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। जब महाराज पांडु का देहांत हुआ तो सोचे कि दोनों स्त्रियां मर जाएं एक साथ पांडु के साथ, लेकिन पांच पांडव छोटे थे बहुत, बोले दोनों मर जाएंगे तो इनकी देखरेख कौन करेगा, पांच थे। तो बोले एक मर जाए डिसाइड, फिर उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि एक एक स्त्री मरेगी, एक बच्चों को संभालेगी। तो कौन मरेगी? तो माद्री बोली मैं जाऊंगी, इतना उत्साह था उनमें, तो तुम जीवित रहो। तो माद्री उसमें मर गई और महारानी कुंत्री जो पांचों पांडवों के लिए जीवित रही। तो अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद बोलते कि एक शिष्य को भी ऐसे ही होना चाहिए। आज के श्लोक का तात्पर्य में कि श्लोक में तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी कि जिस प्रकार पति परायणा पति अपने पति अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य अगले श्लोक इस तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जब गुरु मर जाता है और जो शिष्य है, गुरु शिष्य को जो आदेश देते हैं, अगर शिष्य उस आदेश को पूरा नहीं कर सकता है तो शिष्य को भी ये चाहिए कि गुरु के साथ मर जाए। नहीं मरना है तो शिष्य गुरु के आदेश का पालन करना है। दो उसके पास ऑप्शन है, एक तो जो गुरु का आदेश है उसका पालन करें, अगर नहीं कर सकता दूसरा ऑप्शन है गुरु के साथ मर जाए। तो जिसको जो चुनना है वो चुन सकता है। जिसको आदेश पालन करना है वो जीवित रह के प्रचार कर सकता है जो आदेश है, नहीं इच्छा है तो भी वो गुरु जब मरेगा उसी के साथ उसको भी मर जाना है, ऐसे ये शास्त्र है। तो प्रभुपाद ने इसमें लगा कि जितने भक्त हैं उनके उनकी पत्नियों को भी इसमें लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भक्ति ही ज़्यादा जरूरी है। भक्त नहीं चाहता कि उनकी पत्नी भी उनके साथ ये हो जाए, उनकी इच्छा कि वो पीछे रह के, उनका ये आदेश होता है कि तुम भक्ति का पालन करो। तो गुरु का कितना महत्व प्रभुपाद ने इसमें बताया है। हम सुबह मंगलारती में आधा घंटा गुरु जी की प्रार्थना करते हैं, फिर 15-20 मिनट दो बार कम से कम हम करते हैं, तो उसमें गुरु की इतनी महत्ता बताई है कि संसार दावा नल लीढ़ा लोक का, कि ये जो संसार है एक दावा नल है, मतलब ऐसी आग है कि जिसमें जलना ही है और उससे बचने का एक ही उपाय है कि उस जो जंगल की आग है जिसको दावा नल बोलते हैं वो बुझ सकती है केवल बारिश से, वहाँ कोई फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता, जंगल के अंदर सब झाड़ रहते हैं तो संभव नहीं है, इतना पानी भी वहाँ नहीं लेके जा सकते। वो आग बुझ सकती है, उस जंगल की जीव जंतु बच सकते हैं केवल बारिश होने से। तो गुरु रूपी गुरु का जो कृपा है ये है बारिश, उसके द्वारा वो आदमी बच सकता है, नहीं तो उसका जलना निश्चित है। तो संसार का उपमा दी गई है दावानल अग्नि की तरह। प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु सी शरणारविंदम। तो ये कृपा के गुरु महाराज जी क्या है, ये सागर हैं, और उनके अलग अलग बाद में वो वर्णन है कि वो कैसे रोमांच उनको होता है, महाप्रभु के कीर्तन में वो नाचते हैं और कैसे भगवान को प्रसन्न, वो सब सिखाते हैं शिष्य को कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा करें। गुरु की यही इच्छा होती है कि शिष्य हमेशा आध्यात्मिक प्रगति करें। गुरु जो असली गुरु होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि शिष्य की भौतिक उन्नति देख के उनको खुशी हो। भौतिक उन्नति होती तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में उसका जो पहले आध्यात्मिक जो उसका प्रगति है, गुरु इस पे उसका बहुत ध्यान होता है। तो हमेशा उनके ये आदेश होते हैं कि तुम साधना भक्ति में या भगवान की जो भक्ति इसी में आगे बढ़े। जब शिष्य इसमें आगे बढ़ता है तो गुरुजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो शिष्य का भी ये कर्तव्य है कि गुरु के आदेश को अपने जीवन का प्राण समझ ले, और इनके आदर्श हम देखते हैं, इनके जो प्रसिद्ध मतलब इतने उदाहरण है बहुत से शास्त्रों में, हमारे प्रभु श्री प्रभुपाद जी का भी हम जीवन देखते हैं कि केवल उनकी एक ही इच्छा थी कि मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन कर, उनके और कोई इच्छा नहीं थी। लोगों की तो इच्छा रहती है हम बंगला बनाएं, ये बनाएं, विदेश जाए, इधर जाए, वो उनकी कोई इच्छा नहीं थी। उनको एक ही इच्छा थी कि मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है इसकी पूर्ति करने के लिए। उनके गुरु का आदेश था कि विदेश जाके अंग्रेजी में ये प्रचार करें और किताबें छाप के उसका वितरण करें। तो इस दोनों काम के लिए श्री प्रभुपाद जी के पास पैसा नहीं था। तो कभी भी शिष्य ये नहीं सोचता है कि गुरु जो आदेश दिया मैं उसे पूर्ति नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी हम देखते हैं लोग जाते हैं गुरु के पास और जो बोलते हैं महाराज मेरी ये समस्या है, तो गुरु जी बोलते हैं ठीक है तुम ये समस्या है तो ऐसे करो। तो वो सोचता है कि ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, फिर वो गुरु को बोलता है महाराज तुम नहीं जानते मेरे क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है जो गुरु बोल रहा है वो सुन लेना चाहिए ना। लेकिन जो शिष्य अध्यात्म में ज्यादा बड़े चढ़े नहीं है या जो गंभीर नहीं है वो गुरु के आदेश को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और कभी भी भक्ति में प्राप्त नहीं करते। तो सुबह के प्रार्थना में हम गाते हैं कि यश प्रसादात भगवत प्रसादो यश अप्रसादान न गति कुतोपी। अगर भगवान की जिंदगी में कभी कृपा होगी तो गुरु कृपा करेंगे तो ही होगी, अगर गुरु जी कृपा नहीं करेंगे तो कभी भी भगवान कृपा नहीं करेंगे। चाहे वो कितना भी भजन करे, कितना भी वो मंदिरें बनाए, कितने लाखों करोड़ लोगों को रोज खाना खिलाए, खोज भी कर ले, चाहे 1000 माला का मंदिर बना ले, कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हम गाते हैं रोज इस्कॉन में, हजारों 10,000 20,000 लाखों लोग गाते हैं। यश प्रसादात भगवत प्रसादो यश अप्रसाद, उसका कोई गति ही नहीं है, न गति कुतोपी, ये नहीं कुछ गति होगा, कुछ गति नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो और हमारा जीवन सुखी बने, तो उसका एक ही भक्ति में प्रगति करें। अल्टर बंद हो रही क्या? श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, यशोदा वल्लभ महारानी की, बलराम की जय, जगन्नाथ भगवान की, श्री गौर निताय की। तो सुख से जीना है, भक्ति में नाचना है, कूदना है, हंसना है, तो एक ही तत्व है गुरु। इसलिए प्रभुपाद जी इतना इस तात्पर्य में जोर दिए, अगर तुम नहीं कर सकते तो तुमको जिंदा नहीं रहना चाहिए, तुमको तो मर जाना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है स्पष्ट, या तो तुम तुम्हारे गुरु का सुनो या तो तुम मर जाओ, ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है इसमें। तो इतना महत्वपूर्ण है गुरु के आदेश और गुरु। तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि कुछ सुविधा नहीं थी उनके पास, कुछ भी सुविधा नहीं थी, कोई पहचान का नहीं था, उम्र भी ऐसे नहीं थी कि वो भाग दौड़ करे और वहां पे जाए, लेकिन इच्छा थी। हर दिन उनको यही लगता था कि मुझे मेरे गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो कोशिश करते रहे, कितने लोगों से मिलते थे, यही बोलते थे कि मुझे अमेरिका जाना है। तो लोग बोलते थे ठीक है, जाना है ठीक है, कोई मदद नहीं करता था। जब वो मिले एक अग्रवाल को मथुरा में, उनको भी ऐसे बोला, सच बोला उनको, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे गुरु की इच्छा थी। तो वो बोला हाँ मेरा बेटा रहता है, आपकी व्यवस्था कर देगा। प्रभा जी बोले बोलो तुम्हारे बेटे को मुझे बुलाएं। प्रभात को पता था कि कोई नहीं बुलाएगा, और प्रभात उसको भूल भी गए थे। उसके बाद उनको एक दिन राधा दामोदर मंदिर में एक लेटर आया अमेरिकन एम्बेसी कि तुम्हारा वो रहने की जवाबदारी लेने के लिए तैयार है, आप अमेरिका आ सकते हैं। प्रभात को बड़ा अच्छा लगा, एकदम उत्साह आ गया फिर कि चलो कुछ आशा दिख रही है। तो रहने की तो व्यवस्था है, लेकिन जाने की व्यवस्था नहीं थी। कौन देगा पैसा, फ्लाइट का टिकट कौन निकाल के देगा? तो प्रभुपाद बोले क्या करें। फिर उनके दिमाग में आया कि बॉम्बे में सुमिति मुरारजी वो श्रद्धालु है, और वो उनको शायद कुछ मदद करे। उनके जहाज जाते थे अमेरिका, पानी के जहाज जिसमें केवल सामान भरा हुआ होता है, ऐसे क्रूज नहीं था कि उसमें लग्जरी रूम्स है, ये है, ऐसा कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद बोले मुझे जाना है, कैसे भी जाना है। तो वो गए, उनको फिर वो तो शुरू में तो वो फिर तैयार नहीं हुई, वो तो यही बोल रही थी कि आप मत जाओ, आप जाओगे तो पहले तो आप मर जाओगे और आपको खाने को कुछ मिलेगा नहीं, केवल मांस ही खाते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद पूछे वहाँ पे आलू मिलते हैं क्या? तो बोले आलू तो मिलते हैं। बोले आलू खा के जिंदा, क्या प्रभुपाद का समर्पण था अपने गुरु के प्रति, आलू खा के जिंदा रह लूंगा, जहाज में किस तरह भी बैठ के चला जाऊंगा, और उम्र कैसे भी, कोई पहचान का नहीं, कुछ पैसे कुछ कुछ नहीं था, लेकिन इतना दृढ़ विश्वास था गुरु के वचनों में। जब इतना प्रचार हुआ तो प्रभुपाद बोले मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना प्रचार होगा, और प्रभुपाद ने इस प्रचार का कभी भी अपने को श्रेय नहीं ले गया, मैंने किया, मैंने गया, मैंने। प्रभुपाद बोले जो कुछ भी है ये केवल मेरे गुरु महाराज की कृपा है। तो इस प्रकार से फिर प्रभुपाद हम देखते हैं किस प्रकार से वो सक्सेस हुए। जिसको मिलते हैं उसको भक्त बनाते, जिसको मिलते भक्त बन जाते, जिसको मिलते भक्त। तो प्रभुपाद बोलते कि ये भी मैंने कर रहा हूँ, ये मेरे भी मेरे गुरु की कृपा है, और भगवान मुझे भेज रहे हैं इन लोगों को। तो इतने समर्पित लोग जो प्रभुपाद के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार थे, अगर प्रभुपाद बोल देते तो मर जाओ, तो मरने के लिए भी तैयार थे, इतना उनको प्रभुपाद जी पे विश्वास था। तो हमारे जो आध्यात्मिक प्रगति है, इस तात्पर्य से हम देख सकते हैं कि केवल, फिर गाते हैं केवल भक्ति सदम, दूसरा हम जब प्रार्थना गाते हैं सुबह 7:30 बजे, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदम वंदमोहि सावधान मते जहारा प्रसाद है भाई, ये भवतरी है, ये भव तरना है, इनकी कृपा, जहारा प्रसाद है भाई, ये भवत प्रसाद नहीं है, इनकी कृपा नहीं है तो डूबना निश्चित है। ये भवत कृष्ण प्राप्ति हो जहां है ते, उसको ही कृष्ण प्राप्ति होगी, जिसको प्राप्ति नहीं तो कृष्ण प्राप्ति कभी नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं है तो। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे कौरी आज्ञ, कि गुरु जो बोल रहे हैं बस वही करना, अपने निजी विचारों को खड्डे में फेंक देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये करूँगा फिर मैं देखूंगा, ऐसा नहीं, अपने विचार को बाजू में। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते आर ना करिए मनाशा, श्री गुरु चरण रहती यही से उत्तम गति। अगर गुरु के चरण में नहीं है तो उसका दुर्गति निश्चित है। सदगति उसी का होगा, उत्तम गति उसी का होगा जिसको अपने गुरु के चरणों के प्रति प्रेम है। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम, ये प्रसाद है पूरे सर्वाशा, उसका ही जो इच्छा पूरी होगी। और गुरु की कृपा नहीं तो उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी, आध्यात्मिक इच्छा तो कभी नहीं होगी, भौतिक इच्छा शायद कुछ नहीं उसका लाभ। तो इसलिए इस तात्पर्य में गुरु के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है। वैदिक संस्कृति कैसी थी बताया है, आज वैसे वामन जी का भी आज आविर्भाव है, आज जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव है, और परसों हरिदास ठाकुर का भी उत्सव है, और साथ में विश्व हरिनाम कीर्तन भी चल रहा है। तो जो वामन जी थे उनके बारे में भी हम दो मिनट बात कर चर्चा करेंगे, और जीव गोस्वामी के बारे में एक मिनट, हरिनाम के बारे में एक मिनट, पाँच मिनट में हम तीन लोगों की चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था बलि महाराज से, इंद्र का जो स्वर्ग है इसको लेके वापस लौटाने के लिए। इंद्र आप देख लो इस कथा में भी, जब बलि महाराज गए इंद्र से लड़ने के लिए, इंद्र ने देखा बलि आया, इतना ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व को जला देगा, विश्व को फिलेगा, बहुत तेज हो क्या है। तो इंद्र जाके गुरु को बोला, गुरुजी बृहस्पति जी इसका तो बहुत लग रहा है कि बहुत जीत नहीं पाएंगे, बहुत तेज है। तो बृहस्पति जी ने उनको यही बोला, गुरु का ही उन्होंने उदाहरण दिया, बोला इसका ये तेज अपना तेज नहीं, इसका तेज इसके गुरु के द्वारा है। इसको जो आज ये ताकत आई है, शुक्राचार्य ने इसको बनाया ऐसा, और तुम उसको नहीं हरा पाओगे। तो फिर बोला मैं क्या करूं, बोले करना क्या है तुमको, दो यहां से जिंदा रहना है कि नहीं, बोले हाँ, तो अभी तो तुम चले जाओ, अभी यहां से गायब हो जाओ, बचोगे तो हार जाओगे, लड़ाई करोगे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इसका अपना तेज नहीं है, इसके इसके गुरु का तेज है। इंद्र बोला नहीं नहीं चलो अभी गायब हो जाते हैं, बाद में कोई उपाय ढूंढेंगे। तो बोले चलो गायब हो जाओ, सब देवताओं को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंद्र ने, सब देवता गायब हो जाओ। बलि महाराज ने अपने सैनिक को भेजा, जाओ हमें शंख बजाया, उधर से आवाज नहीं आई है लड़ने के लिए, देखो क्या कर रहे हो वो, कितनी देर है। और कोई आदमी जाके देखा धीरे धीरे, एक भी देवता नहीं है। तो बोला हाथ हिलाया, कोई नहीं है, कोई नहीं है, चलो आए। फिर उन्होंने कब्जा कर लिया पूरा स्वर्ग पे। तो उनकी जो माता थी इंद्र की, ये दुखी हो गई कि मेरे बेटे घरदार नहीं है, और माता को तो लगता अपने बच्चे सुख से रहे। तो वो ये नहीं चाहती थी कि बलि मर जाए और मेरा बेटा राजा बन जाए। वो बोली कि बलि अपना राज्य संभाले, वो कहीं भी रहे कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे बेटे का राज मुझे मिल जाना चाहिए। जब कश्यप जी आए तो उन्होंने फिर देखा, एक पूछा क्या समस्या है। तो बोली कि ये समस्या है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटों का उनका घर वापस मिल जाए, उनका जो राज्य उनको मिल जाए। तो कश्यप जी बोले कि ये लड़ाई झगड़ने से मिलने वाला नहीं है, इस चीज में तुमको मदद कर सकता है एक ही व्यक्ति, भगवान। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो भक्त है कभी भी मुसीबत आती है तो भगवान के पास जाते हैं, और अभक्त है वो भी यही तरीका अपनाते हैं, या मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए हजारों लोग जो इतना भक्ति में जुड़े नहीं है, लेकिन अपने दुख लेके जरूर आते हैं भगवान, मन में बोलते रहते हैं भगवान से। अगर हमको पता चलता कि कोई क्या बोलता है तो हमको पता चलता कि किसका क्या प्रार्थना चल रही है, लेकिन वो हमको नहीं, भगवान ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय वो जानते हैं हमारे हृदय में हम क्यों आए हैं, हमारी क्या इच्छा है, और वो मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है कि भगवान से कुछ भौतिक चीजें मांगे। भगवान से वही मांगना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु ने मांगा था, न धनम न जन्म न सौंदर्य कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतु की तुई। अहेतु की भक्ति मान, जब तक मांगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, जब तक इच्छा नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। तो भक्त यही मांगते हैं, वो धन के पीछे नहीं होते हैं। जो शुद्ध भक्त की इच्छा होती है कि भक्ति में प्रगति करे। तो कश्यप जी ने बोला कि आप भगवान की कृपा, बोले क्या करूं, क्या विशेष कुछ है क्या? फिर उन्होंने उनके लिए एक साधन बताया, पयोव्रत व्रत 12 दिन का। और जो अदिति को, अदिति को उन्होंने बताया था पुंसवन व्रत, उसका थोड़ा अलग था इच्छा। बोले मैं इंद्र को मारना चाहती हूँ। तो कश्यप जी बोले ये नहीं। तो अदिति, मैं अभी दिति का बोल रहा था क्या? दिति नहीं, अदिति, अदिति जो कश्यप जी को बहुत से पत्नियां थी, उसमें से ये दिति अदिति दोनों उनकी पत्नियां थी, दोनों सगी बहनें थी। एक को असुर हुए, एक को सुर हुए। तो अदिति जो माता थी, फिर उन्होंने पयव्रत व्रत किया। और भगवान जब वामन जी आज के दिन, वामन द्वादशी आज के दिन प्रकट हुए अदिति के सामने, बोले माता जी बोलिए क्या है? बोले कुछ नहीं, मुझे मेरे मुझे हमको स्वर्ग हमारा चाहिए, हमारा ही हमको चाहिए। तो वामन जी बोले कि मैं भी अगर बलि से युद्ध करूंगा तो तुमको नहीं दिला पाऊंगा, तो मैं तुमको दूंगा, मुझे एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, मुझे जाके उनसे इसके लिए भीख मांगनी पड़ेगी। तो दीति बोली कुछ भी करिए, मेरे को हमारा राज्य चाहिए। तो गए वामन जी बलि की यज्ञशाला में, छोटे से 5 साल के और ब्राह्मण के रूप में। बलि महाराज ने देखा कितना छोटा सुंदर सा बच्चा आया है ब्राह्मण का, और कुछ भिक्षा मांगने के लिए आया है, बहुत खुश हुए। शुक्राचार्य ने देख रहे थे, वो समझ गए ये कोई बच्चा नहीं है, ये बहुत बड़ा जादूगर है ये। तो जब गए, उनका नंबर आया, टर्न आया वामन जी का, समय हो गया है प्रभु जी, 2-3 मिनट और बोल सकते हैं? तो वो बलि ने बोला कि क्या चाहिए बच्चे? बोलिए ब्राह्मण देवता क्या दूं? बोले कि हे बलि महाराज जी, मैं तो ज्यादा ब्राह्मण लोग, हमको तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे 3 पैर रखूंगा, 1-2-3 पैर मेरे, जितना मैं 3 पैर रखूंगा, जितनी जगह है आप मेरे नाम से लिख देना, हो जाएगा। भले महाराज बोले तुम पागल है, इतने से तुम्हारे पैर, 1-2-3 क्या तुम्हारी जगह होगी, क्या कौन सा बिल्डिंग बनाओगे, कितना माला बनाओगे तुम? अरे तुम एक गांव मांगो, एक देश मांगो, मैं तो अभी स्वर्ग का भी राजा हूं, तो आप जो चाहे मैं दे दूंगा। तो वामन जी बोले नहीं नहीं बलि जी, हमको ज्यादा लालच नहीं है, ब्राह्मण लालची नहीं होते थे। जब हम देखते हैं भगवान राम ने दक्षिणा में पूरा राज्य दक्षिणा में दे दिया था, हे ब्राह्मण जी यज्ञ किया आपने, इजली दक्षिणा, क्या दक्षिणा, मेरा पूरा राज्य। ब्राह्मण खुश हो गए, और आज के ब्राह्मण रहते तो बहुत खुश होते थे। तो फिर ले लिया, राम जी ने गहने भी दे दिए, सीता को बोले दे दो सब गहने, सीता माता ने भी सब गहने दे दिए। कुन्नत ने बोले भाई हमारे पिताजी का है, तुम्हारा नहीं, हम नहीं देंगे। तो ब्राह्मण ने ले लिया, फिर बोला भगवान श्री राम जी इधर आइए। बोले क्या अभी क्या सेवा करूं, ये हमारा राज्य है, हम आपको आपको प्रसाद के रूप में वापिस दे रहे हैं सब। आज हम किसी ब्राह्मण को 1-2-5 हजार रुपए देंगे, क्या कितना दिन लौट आएगा वो। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का तेज क्यों रहता है, क्योंकि वो लालच नहीं है उसमें। लालच आ जाएगा तो उसका तेज खत्म हो जाएगा, उसकी तपस्या खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब ये हुआ वामन जी का डिमांड, तो शुक्राचार्य बोले ये बलि बलि रुक जा बोले ये तू जानता नहीं ये कौन है। बोले कौन है? ब्राह्मण का बच्चा कौन है? अरे तो पागल, ये विष्णु है। बोले विष्णु ये भगवान है। अरे तो बोले बहुत अच्छी बात है, तब तो उनको खुशी के लिए हम ये कर रहे हैं कि ले हमसे वो हमारी भेंट स्वीकार करे, वो खुद मांगने के लिए आ गया, इसे बड़ा और क्या। अरे वो सब ले लेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो बोले तो और भी अच्छा है। कथा बड़ी लंबी है, हम नहीं ये करेंगे अभी, एक मिनट हम चर्चा करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनसे दान लिया और अपने तीन पैर इतने बढ़ाए, इसको बोलते हैं भगवान। कलयुग में हम देखते हैं लोग अपने आप को भगवान बोलते, चलो भाई बोलेंगे, हम बोलेंगे भगवान वामन नाम अवतार में एक पैर पूरा पृथ्वी पर नाप डाल दिया था, आप भगवान हैं। आप पुणे में कोई बोलेगा मैं भगवान हूँ तो बोलना ठीक है, एक पैर आप पूरा पृथ्वी मत डालिए, आप इतना बढ़ा दिए पूरा पुणे में फैल जाए, कुछ नहीं, ये नकली भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने फिर वो लेके इंद्र को अपना वो राज्य लौटा दिया, और बलि को भी ऐसा राज्य दिया जो इंद्र से बढ़कर था। और बलि को बोला अभी तुम्हारा जो सुतरलोक है उसका वॉचमैन मैं रहूंगा, और दूसरा कोई आ नहीं पाएगा, भगवान वॉचमैन है तो अब कौन सा गुंडा घुसेगा अंदर, हाँ तो कोई जान नहीं पा सकता है। तो और बोले तेरे लोग भी तेरा नहीं सुनेंगे तो भी मैं उनको पनिशमेंट मैं दूंगा। इस प्रकार से आज का दिन था जिस दिन वामन जी का प्राकट्य हुआ था, और आज के दिन ही जीव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ। जीव गोस्वामी भी ये हमारे जो छह गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके एक भाई थे अनुपम गोस्वामी, और उनका ये बेटा था। तो रूप सनातन के ये भतीजे थे और जाना चाहते थे वृंदावन, लेकिन पहले फिर वो गए नवद्वीप, और वहाँ पे नित्यानंद महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने उनको पूरा नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराया। बोले अभी तुम सीधा जाना नहीं है वृंदावन, अभी तुम पहले जाना वाराणसी, और वहाँ जाके तुमको वेदों में बहुत पारंगत होना है और फिर वृंदावन जाना है। तो वो नवद्वीप मंडल परिक्रमा करके वो गए वाराणसी, और वहाँ पे पंडितों से उन्होंने वो जो वेद के अंदर इतने पारंगत हुए, और फिर वो गए वृंदावन, और वहाँ पे वो छह गोस्वामी में एक उनको वो भी गोस्वामी है जीव गोस्वामी। तो हमेशा ही भगवान की भक्ति में बहुत ही तेज थे, शास्त्र में तेज थे। एक बार एक दिग्विजयी था पंडित, और उसकी इच्छा थी कि संसार में मेरे आगे कोई भी पंडित नहीं रहे, तो ये दो जो भाई है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये अगर इनको मैं हरा दूंगा तो लगभग दुनिया के सब पंडितों को हरा दिया है मैंने। तो ये आए, वो पंडित आया दिग्विजयी, और उनको ललकारने की भावना से रूप गोस्वामी सनातन, रूप गोस्वामी सनातन का हमने सोचा इसके कौन चक्कर में जाए, इसके अपना समय बर्बाद कौन करें। बोले क्या चाहता है? मैं तुमसे वाद विवाद करना चाहता हूँ शास्त्रार्थ, और तुम मुझे लिख के दो, अगर तुम जीत गए मैं हार जाऊंगा मैं लिख के दूंगा, तुम हार गए तुम लिख के देना। बोले लिख के हारने वाद विवाद करने की जरूरत क्या है, आप महान है, कौन नहीं आपको जानता है, हम लिख के देते थे, आप बड़े महान है, आप जाइए लीजिए। जब जीव गोस्वामी को पता चला कि इसके पास ये है प्रशस्त, वो लेके आया लिख के, तो उन्होंने उनको ललकारा तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, और फिर उस जीव गोस्वामी उनको हराया था, लेकिन रूप सनातन ने खुशी नहीं हुए, बोले तुम क्यों अपना समय बर्बाद किया उसको ये करके। इस प्रकार के जीव गोस्वामी बहुत ही शास्त्रार्थ में तेज थे, उनको हरा पाना संभव नहीं था। उनका भी आज आविर्भाव है, और हरिनाम विश्व हरिनाम कीर्तन भी चल रहा है अभी, तो ये भी बहुत महत्व है। हम देखते हैं कितने उदाहरण शास्त्रों में कि किस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती को महाप्रभु ने भक्त बना दिया। वो बोला कि प्रकाशानंद सरस्वती बोल रहे थे ये तुम क्या पागल के जैसे नाचते रहते हो, ये करते रहते हो, तुम तो सन्यासी हो, वेद पढ़ना चाहिए। तो महाप्रभु ने उनको जवाब दिया था आप सच बोल रहे हैं, आपका बोलना गलत नहीं है, मुझे वेद पढ़ना चाहिए, मैं सन्यासी हूँ। लेकिन मैं जब मेरे गुरु के पास गया और जाके मैंने मेरे गुरु को बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र आपने मुझे दिया है, ये क्या, बोले मैं पागल हो जाता हूँ इससे। तो मेरे गुरु जी ने फिर बोला कि तुम, मैं धन्य हो कि तुमको ये सब विकार आ रहे हैं। और मेरे गुरु जी ने मुझे बोला था एक समय कि तुम मूर्ख हो, तुम ज़्यादा कुछ मत करो, तुम केवल हरे कृष्ण महामंत्र करो, इसलिए मैं यही करता हूँ। जब मैं करता करता गया तो मैं पागल हो गया। तब मैं गुरु के पास गया और बोले ये क्या मंत्र दिया आपने? बोला वेद पढ़ना नहीं है, मंत्र करना है महामंत्र को, तो मैं पागल हो गया। बोले हाँ, यही मैं चाहता था कि तुम पागल बनो, इसमें मैं बहुत खुश हूँ तुम ऐसे ही पागल हो, इसलिए मैं ये करता हूँ। कि मेरे गुरु, यहाँ भी एक गुरु की बात आती है, इस महामंत्र में भी, ये पूरे श्लोक में, पूरे इसमें देख, जहां भी आप घुसोगे गुरु ही दिखेगा। हरे कृष्णा। शील प्रभा देखे गंतराश्रम भागवतम खे।